Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और उसको ताला बंद लगा दो और ताली सदा अपने पास रखो और सुबह एक बार खोल के देख लिया करो, लेकिन ये रहस्य किसी को बताना नहीं। अब महाराज धीरे धीरे बूढ़ों ने ऐसा ही शुरू कर दिया काम। एक दिन बहू ने देखा, रोज ही खोल करके देखते हैं, ताला देते नहीं और बताते भी नहीं। उन्होंने सोचा इसमें कुछ माल रखा है। वो उनके नजदीक हुई, सेवा करने लगी। दूसरी बहू ने देखा जरूर कुछ गड़बड़ है, वो भी सेवा करने लगी। चारों लड़के बढ़िया सेवा करने लग गए, क्योंकि उन्होंने लगा कि सोना चांदी इसमें रखा हुआ है। महाराज जब शरीर पूरा हुआ तो बैठे कि कितना बड़ा इनका वो किया जाए, जो करते हैं ना 12वें दिन क्या करते हैं, बहुत पैसे लगा दिए। उन्होंने विचार किया कि तो सोना चांदी तो भरा हुआ है ही, मिल जाएगा। और जब सब मिल करके बांटना का नंबर आया, धन को खोल करके देखा तो कंकर पत्थर थे। तो चलो सेवा करवानी हो तो वो भी उपाय ठीक है, वो भी उपाय ठीक है। लेकिन बात है कि हमारे मन में उसके प्रति कितना राग है, इस बात पर निर्भर है। हमारे मन में कितना द्वेष है, इस बात पर निर्भर है। धन और संपत्ति की हमारे यहां निंदा नहीं है, ध्यान रखना। वेद में लिखा है वयम श्याम पतयो रईणाम, रई कहते धन को। हम धन धान्य संपन्न हो जाएं, और भारत में गरीबी थी नहीं। आप प्राचीन शास्त्र साहित्य पढ़ेंगे तो लिखते हैं कि उस राजा के राज्य में भिक्षा केवल भिक्षु के पास ही थी, यानी भिक्षा कोई नहीं, भिक्षारी कोई नहीं था, केवल जो भिक्षुक होता था। शास्त्र नियम मर्यादा के अनुसार संन्यासी को भिक्षा का अधिकार है, वे ही भिक्षा लेते थे, वो भी 3 घर से ज्यादा नहीं। दंड केवल संन्यासी के पास ही होता था, समाज में दंड नहीं था, अर्थात कोई बुरा काम नहीं करता था कि किसी को दंड दिया जाए। तो ऐसे से वर्णन है। तो हमारे मन में, हमारे भाव में, भले हमारे पास धन संपत्ति वैभव कितना भी हो, लेकिन देखना है कि उसके प्रति हमारा लगाव कितना है, अटैचमेंट कितना है। राजा जनक तो राजा ही थे, अश्वमेध राजा ही थे, ऐसे सैकड़ों राजा हुए हैं और अवधूत भी हुए हैं, जिन्होंने राजपाट छोड़ करके और अवधूत वृत्ति अपना ली। महाराज शुकदेव त्यागी हुए हैं, लेकिन कृष्ण भगवान तो रागी हुए हैं, लेकिन उनके त्याग और उनके राग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मन से भाव से किसी चीज को ग्रहण नहीं किया, व्यवहार की दशा में सब कुछ रहा। तो अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में राग और द्वेष को निकालना होगा, न राग रहे न द्वेष रहे। अच्छा, अगर सहज में नहीं निकलता हो तो उसका एक ही उपाय है, आप समग्र रूप से भगवान का चिंतन करें। जो हम श्री कृष्ण को विग्रह के रूप में देख रहे हैं, अब उस विग्रह को समझो कि सामने ये वृक्ष खड़ा, ये कृष्ण का ही विग्रह है। ये सामने जो पूरा का पूरा मंदिर है, इसका पूरा का पूरा ये श्री कृष्ण ही है। ये सामने हमें पर्वत दिखाई दे रहा है, ये श्री कृष्ण ही है। ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो राम ही है, वो शिव ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे जब आप विराट रूप से परमात्मा का चिंतन करेंगे तो विराट रूप से चिंतन करने से धीरे 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 आपके अंदर जो व्यष्टि का मैपना है वो समाप्त होता हुआ चला जाएगा और विराट पुरुष की अवधारणा आती हुई चली जाएगी। तो राग और द्वेष आपके जीवन से निकलते हुए चले जाएंगे। तो नयावधुमानाथ पादारविंदम भजंती है लोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम। तब तक सुख शांति और संताप का नाश। ताप हमारे हैं, ताप कितने प्रकार के ताप हैं, तीन प्रकार के ताप है। ये तीनों प्रकार के ताप की निवृत्ति भगवान शिव की आराधना से है। शिव की क्यों, वो शांत है, परम शांत है, तो वहां कुछ है ही नहीं, एकदम शांत भाव से बैठे हुए हैं। एक बार शनि महाराज ने कहा, महाराज मैं आपके यहां आ जाऊंगा, महादेव जी को मैं आपके यहां आ जाऊंगा तो आपका पूरा नाश कर दूंगा। महादेव जी ने कहा, तेरा स्वागत, अभी चल। वो तो शमशान में बैठे हुए थे। शनि कहने लगे, अब और कहां ले जाऊं मैं तुमको, कहां ले जाऊं, वहां कुछ है ही नहीं। आहा, ऐसे शिवजी महाराज हैं, शांत भाव से समाधि मुद्रा में सदा रहते हैं, शांभवी मुद्रा में सदा रहते हैं, समभाव में सदा रहते हैं, शांत भाव में सदा रहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ब्रह्म की एक परिभाषा बताई है, एक शब्द में है, बड़ी प्यारी है, आपको याद होगी, नहीं याद, हाँ याद तो है, मैं बोलूंगा तो याद आ जाएगा, बस इतना ही है, ऐसा नहीं आपको याद नहीं है, बस वो क्लिक करने की बात है। उन्होंने कहा है कि निर्दोषम ही, आगे ना याद है, याद तो है, ऐसा नहीं याद नहीं है, लेकिन बात तो उतनी है कि हम किस पॉइंट को किस दृष्टि से समझते हैं। ब्रह्म क्या है? समम। ब्रह्म क्या है, क्यों है समम? निर्दोषम, निर्दोष है वो, तो क्या अपराध करते हैं? ब्रह्म नहीं, अपराध नहीं करते। यहां जो दोष है वो अविद्या है। दोष क्या है? अविद्या है, बीज भाव है ही नहीं उसमें। तो जब अविद्या से रहित है, निर्दोष है, अविद्या से रहित है, तो कैसे है वो? सम है। ये जो समता है, समता, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, तो ये जो समता का भाव है, ये जब तक आप अपने जीवन में ब्रह्म को समता के रूप में नहीं देखोगे, विराट के रूप में नहीं देखोगे, व्यापक के रूप में नहीं देखोगे, अरे समष्टि के रूप में जब तक नहीं देखोगे, तब तक हमारे अंदर समता कैसे आएगी? अभी तो देखिए, हालांकि हम कहते तो हैं, फिर भी कुछ विकार तो देखो आ ही जाते हैं। अभी वृंदावन में एक केस चला था बहुत पहले, केस ये था कि ये कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण दाई तरफ मुकुट पहनते हैं वो असली नहीं है। एक भक्तों ने, हाँ केस चलाए, एक ने कहा कि जो बाई तरफ मुकुट पहनते हैं वो असली नहीं है महाराज, अब तो थोड़ा बहुत दूरियां कम हो रही हैं, नहीं तो पहले राधा वल्लभ मंदिर वाले बांके बिहारी में नहीं आते थे और बांके बिहारी वाले राधा वल्लभ मंदिर में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी धारणा के अनुसार भगवान को बनाया, और जब हम अपनी धारणा के अनुसार भगवान को बना देंगे तो हम सिमट जाएंगे, और जब हम शास्त्र की धारणा को लेकर के चलेंगे तो हमारा विस्तार हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र जो है, शास्त्र परमात्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र ये कह रहे हैं कि भाई वो तो अस्थि भाति प्रिय रूप है, अरे नाम और रूप तो उन्होंने अपनी लीला के लिए स्वीकार किया है, तो कभी वराह वृत्ति भी स्वीकार कर लिया उन्होंने, तो कभी कोई सा स्वीकार कर लिया, मत्स्य भी उन्होंने स्वीकार किया। सुअर को हम कितना गंदा मानते हैं, मछली को कितना मानते हैं, लेकिन उन्होंने तो वो रूप भी लिया। तो आप ध्यान से देखिए, जब शास्त्र विधि से आप भगवान का चिंतन करेंगे तो आपको समग्र रूप से सारा का सारा संसार भगवान का रूप दिखाई देगा। सिया राम में समग्र रूप से तब दिखाई देगा जब आप समष्टि रूप से भगवान को ध्यान में देंगे, और समष्टि रूप से ध्यान देंगे तो ही समता आएगी, और जब समता आ जाएगी तो ही भगवान आपके अंदर आते हुए चले जाएंगे, आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, हम कथा सुनते हैं, देखो ये तो आज भगवान शिव जी की, कल से कृष्ण की कथा करेंगे। कथा तो कथा ही है जो व्यथा को हरण करे। आनंदमयी मां कहती थी, कृष्ण कथा रे कथा, बाकी सब व्यथा है ना। तो कथा हम सुनते हैं राम और रावण की, कितनी बार सुनी हमने, अनेकों बार सुनी। लेकिन अनेकों बार कथा सुनने के बाद क्या हमने राम की तरह व्यवहार किया? हमने जो हर बार रावण हमारे ऊपर सवार हो जाता है, रावण माने मोह, क्रोध, लोभ, यही तो रावण है। जो अनेकों बार रावण हमारे ऊपर सवार हो जाता है, हमने राम बनकर के कितने बार उसको दूर किया? तो आप हजारों बार कथा सुने, लेकिन जब कथा के रहस्य को जीवन में नहीं उतारेंगे, कथा को जीवन में लेकर के नहीं आएंगे, तब तक कथा सुनने का जो फल है आपको, वो फल प्राप्त कैसे होगा? राम समता में है, रावण विषमता में है, और विषमता में रहने का परिणाम 16 लख पुत्र सवा लख नाती ता रावण घर दिया न बाती। ये विषमता का फल है, और समता का फल आज हम उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, गुणगान करते हैं। तो देखो, हम समता में रहना सीखे, विषमता में नहीं, क्योंकि विषमता का परिणाम देख लिया है। तो राम की तरह से हम समता में आ जाएं। इसी प्रकार से जितना भी हम श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण हमारे जीवन में आता हुआ चला जाए, तो जब तक आप तप के द्वारा राग और द्वेष को आप नहीं निकाल देते, ये तप है, वो चाहे आप घर में बैठ करके करें, चाहे बाहर बैठ करके करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वने भी दोषा प्रभवंती रागे नाम, अगर राग साथ में लेकर के जाएंगे तो जंगल में भी दोष आ जाएंगे। जंगल में जाकर के भी हम अपनी पर्ण कुटी बना लेंगे, फिर उसके चारों तरफ पेड़ लगा लेंगे, फिर कुछ हरिण पाल लेंगे, कुछ सांप पाल लेंगे, और उनमें आसक्ति कर बैठेंगे, क्योंकि वो स्वभाव बन गया, ये राग बन गया कि मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो वहां भी हम मेरापन लेकर के आ जाएंगे। आदमी नहीं मिलेंगे तो पशु मिलेंगे, उनमें मेरापन ले आएंगे। जड़ भरत के साथ क्या हुआ था? राजा भरत के साथ यही तो हुआ था, हरिण के साथ मेरापन ले आए, इतना राजपाट छोड़ करके आए, पुत्र पोत्रों को छोड़ करके आए, और श्रेष्ठ संतान थी, श्रेष्ठ संतान। तो अगर राग साथ में लेके जाएंगे तो जंगल में भी राग हो सकता है, और नहीं तो बैरागी घर में भी बना जा सकता है। पर एक बात बताएं हम आपको, जिस दिन जीवन में बैराग आ जाएगा, उस दिन आप घर में, अब समस्या कि जाओगे कहां? आज के इस युग में आप कहीं जा भी नहीं सकते। जो ये सोचते ना घर बार छोड़ करके आश्रम में, घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ, है ना, तो फिर वहां भी खटपट होगी तो कहां जाओगे? जहां भी दो या दो से अधिक रहेंगे, जहां भी दो या दो से अधिक रहेंगे, वहां खटपट की संभावना बनी रहेगी। नियम है ना, ये तो सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। हम कोई ये थोड़ी हम अपनी बुराई कर रहे हैं, लेकिन मठ में जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, अगर दो और दो से अधिक कहीं भी रहे तो कभी भी खटपट की संभावना हो सकती है। इसलिए इस खटपट को मिटाने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करो, अपने यहां से ही शुरुआत करो, और जब अपने यहां से शुरुआत करोगे तो शुरुआत संभव है जब आप भगवान शिव के पास जाओगे। वहां पर क्या है, उनका पूरा परिवार खटपट का ही है, पूरा का पूरा परिवार खटपट का ही बैठा है। अच्छा, गणेश जी में कार्तिकेय में कभी बात बनी क्या? कार्तिकेय तो रुस करके चले गए थे नाराज होकर के, मालूम है ना आपको, वो बोले मेरा विवाह पहले होना चाहिए था, इनका क्यों कर दिया, नाराज होकर के ही चले गए थे। फिर शिवजी और पार्वती, पार्वती ने कहा मेरा मन तो नहीं लगता, मैं तो कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकती। अरे क्यों, आपका पुत्र तो गणेश है, उससे क्या है, पुत्र तो आपका ही है ना, मैं नहीं रह सकती उनके बिना, तो क्या करें, चलो उसी के पास जाकर के रहेंगे, उसी के पास जाकर के रहेंगे। सारे के सारे परिवारों को इकट्ठा कर रखा है, एक साथ कर रखा है, किसी का वाहन नहीं मिलता, किसी का स्वभाव नहीं मिलता। महाराज उनके जीवनचर्या को देखकर तो देखो तो सारी विपरीत विरोधी जितने भी विरोधी गुण हैं, विरोधी गुण को सारे के सारे विरोधी गुण को आश्रय कर रखा है। तो हमें उनके इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कितना अच्छा। राम जी का विरोध कम था क्या? दशरथ ने राम जी को कहा, रामायण में, वाल्मीकि रामायण की बात करता हूं, रामायण में कहा, राम भरत मामा के यहां गए हुए हैं और तुम अभी से युवराज पद के लिए तैयार हो जाओ, पता नहीं भरत का मन बदल जाए। क्योंकि कैकेयी को जब लेकर के आए थे तो शर्त करके लाए थे कि तुम्हारा लड़का ही राजा बनेगा, ये शर्त की थी। तो भरत बहुत श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पता नहीं मन बदल जाए। ये दशरथ कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? राम को कह रहे हैं। तो अगर आप परिस्थितियों को देखें तो परिस्थितियों को देखने से हमें पता चलता है कि कल्याण करने वाला काम तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं पता नहीं कब मन बदल जाए। तो जीवन में अगर कल्याण की बात आ गई तो उसको पीछे रखना नहीं चाहिए, पीछे नहीं रखना चाहिए। पता नहीं, अगर हमें अपना उद्धार करना है तो आज से ही शुरू कर देना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुरी करेगा। एक महात्मा कहते थे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी है, जीना है अभी बरसों, ऐसा कहते थे। वो एक और बात कहते थे, बोले जो तो को काटा बुए, ताए बोए तू भाला, वो भी पट्टा याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। देखो ये जो भाषण है ना, ये भाषण हाँ आर्मी के अंदर तो अच्छा लगता है, जब आप सीमा रेखा पर खड़े हों, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हों, तब तो ये अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में अच्छा नहीं लगता। व्यवहार तो लेने का देना है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। रामचंद्र को समझाने के लिए जाबाली ऋषि ने कहा, रे राम तू इतनी जिद क्यों कर रहा है, कौन किसका बाप है, कौन किसकी मां है, ये सब बेकार की बात है, लोक परलोक बेकार की बात है, अरे भरत तुम्हें राज दे रहा है ले लो। तो राम ने कहा, तुम कुपथ्य को पथ्य समझ रहे हो, कुपथ्य को पथ्य समझ रहे हो, तुम अधर्म को धर्म समझ रहे हो, तुम अन्याय को न्याय समझ रहे हो। लोक परलोक होता है विश्व में, उसी की विजय होती है जो धर्म पर ठहरता है, विश्व में उसी का पूजा होती है जो अपने धर्म पर रहता है, जो न्याय पर रहता है। और महाराज राम जी ने बड़ा लंबा चौड़ा जब कहा तो वशिष्ठ जी खड़े हो गए, कहने लगे, वशिष्ठ जी तुम जानते नहीं ये कौन है, ये जाबाली है, तुम्हारे पिता का मंत्री है, ये लोक परलोक सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारी मनोस्थिति को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए इन्होंने ये बातें कही। तो रामचंद्र जी ने जैसे कहा, जो दया धर्म सहिष्णुता प्रेम सौहार्द ये जिसके जीवन में है वही जीवन सफल होता है, नहीं तो जीवन निरर्थक ही चला जाता है। तो अपने जीवन में धर्म को स्थापना दें, धर्म को लेकर के आए, दया को लेकर के आए, करुणा को लेकर के आए, प्रेम को लेकर के आए, सौहार्द को लेकर के आए, परोपकार को लेकर के आए, तब जाकर के भक्ति आएगी, तब जाकर के भक्ति आती। नहीं तो महाराज अब देखो, आप कहोगे कि स्वामी जी भी शंकराचार्य जी की बात बोलने लग गए, लेकिन दिल्ली में एक साई मंदिर है, हम बताएंगे नहीं कहां है वो, उसमें दान पात्र के अलग अलग थे, पर पकड़े गए थे वो, तो जो रिश्वत वाले थे ना ऑफिसर रिश्वत लेते थे, आईएएस आईपीएस, वो कहते थे कि मंदिर में चले जाना वहां मिल लेना, तो उनकी रिश्वत का बॉक्स अलग होता था। ये पकड़े गए अखबार की बात बता रहा हूं मैं, कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। रिश्वत जिसमें डाली जाती थी उसके बॉक्स अलग होते थे साईं मंदिर में, और जो साधारण भक्त होते थे ना उसके बॉक्स दान पात्र के अलग होते थे। तो ये क्या है, आपने मंदिर चाहे किसका भी बना लिया हो, लेकिन मंदिर के पीछे भाव क्या है। मंदिर तो बहुत बढ़ गया क्योंकि बहुत रिश्वत के पैसे आते थे तो उनको मिलते थे, विशाल मंदिर बन गया, भीड़ बहुत ज्यादा लगने लग गई, लाइन लंबी लगने लग गई, लेकिन मंदिर को बनाने वाले और मंदिर के प्रति अपनी इतनी बड़ी आस्था और भक्ति दिखाने वाले क्या वास्तव में भक्त हैं? बात तो यहां पर है, बात तो यहां है। अगर आपके मन में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, तो आप कोई भी काम करते रहें भक्ति जीवन में आएगी नहीं। धर्म का होना बहुत आवश्यक है। आप मंदिर बड़े बड़े बना लें, लेकिन मंदिर के पीछे उद्देश्य आपका क्या है? आज तो एक परंपरा ही होगी महाराज, जहां भीड़ ज्यादा जाती वहीं चलो। हमने एक को कहा, कोई काम तो हमने कहा ऐसा करना, तुम हनुमान जी की पूजा कर देना। तो कहने लगे महाराज वहां तो बहुत भीड़ होती है। हमने कहा भीड़ की बात किसने कही है, अरे जो खाली मंदिर दिखे वहीं पूजा कर लेना, हनुमान जी तो हनुमान जी है ना। अरे हनुमान तो हनुमान ही है, वो कहीं भी बैठे हुए हूं। शिव जी तो शिव जी है, वो कहीं भी बैठे हुए। अरे भगवान गौतम ने तपस्या की और तपस्या की, बहुत तपस्वी हो गए, उनके आसपास अकाल पड़ गया, अकाल भयंकर अकाल हो गया, पशु मरने लग गए, प्राणी मरने लग गए, सब छोड़ छोड़ करके जाने लग गए। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभो जल के बिना ये सारे के सारे मर रहे हैं, जा रहे हैं। तो वहां जल प्रकट हो गया, जल प्रकट हो गया तो सभी लोग रुक गए, पशु भी रुक गए, फिर से बस्तियां बसने लगी, फिर से सारी व्यवस्था हो गई, अन्न धान पूरा प्राप्त होने लग गया। तो फिर महाराज अभी ईर्ष्या हुई ब्राह्मणों को, तो वे तो गौतम की पूजा हो रही हमें कोई पूछता ही नहीं। तो फिर एक योजना बनाई, क्या योजना बनाई, कि इनको किसी तरह से पाप लगाओ, मिथ्या कलंक। मिथ्या कलंक भी लगता रहता है, जैसे भगवान कृष्ण पर लगा था ना, ये सारे कलंक किसी पर लगे सही वैसा जरूरी नहीं है। मिथ्या कलंक क्या लगा है, कि एक मायावी गाय बनाई महाराज, वो गौतम ऋषि के यहां छोड़ दी। गौतम ऋषि ने जैसे उनको हटाना चाहो मर गई। उन्होंने कहा इसने तो गाय की हत्या कर दी, ये तो पाप लग गया। अब महाराज सारे के सारे उनके विरोध हो गए, इनको निकालो यहां से। गौतम ने हाथ जोड़े कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप जो कहोगे वह प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। महाराज बहुत भयंकर प्रायश्चित बताया, उसके लिए भी तैयार हो गए वो। फिर परिक्रमा करवाई पूरे के पूरे, उसके लिए भी तैयार हो गए। और फिर तपस्या करवाई, तप करने लगे तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहने लगे तुम्हारे ऊपर मिथ्या कलंक लगाया इन्होंने, इनका मैं नाश कर देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा प्रभु आप ऐसा मत करो, इनका नाश मत करो, ये तो अज्ञानी है, इनका कल्याण ही होना चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। शिव जी ने क्या कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो आप यहां सदा सदा के लिए स्थिर हो जाइए, वही त्र्यंबकेश्वर है। शिव जी वहां प्रकट हुए थे नहीं, शिव जी वहां प्रकट हुए गौतम की तपस्या के कारण। अगर आपके अंदर भी तप है आप भी प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए जहां आप देखो, जहां आप देखो समझो वही भगवान है, वही परमात्मा है। शिव जी वहां प्रकट हो गए और द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत हम उनकी आराधना करते हैं, गौतमी त्र्यंबके त्र्यंबकम गौतमी तटे। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान गौतम ऋषि की तपस्या का परिणाम, उनकी करुणा का परिणाम, उनकी समता का परिणाम, विषमता नहीं आई ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में, विषमता नहीं आई, उनकी समता का परिणाम, उनकी व्यापकता का परिणाम और प्रत्येक में परमात्मा के भाव का परिणाम और सबको परमात्मा स्वरूप समझने का परिणाम है कि भगवान शंकर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो हमारे अंदर यह समता आ जाए तो नयावद उमानाद पादारविंदम भजंती है लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनासम। जब तक शांति मिलने वाली नहीं है, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम। मैं कुछ नहीं जानता, एक ही बात जानता हूं, आपको प्रणाम करना, एक ही बात जानता हूं। न तो हम, मैं झुका हुआ हूं, प्रणाम कर रहा हूं, सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम, क्यों मैं तो जरा मरण व्याधि पीड़ा से तप रहा हूं। प्रसीद प्रभो पाही आपन नमामीश शंभो, पाही रक्षा करो मेरी, मैं आपके शरणागत हूं, हे ईश मेरी रक्षा करो। नमामीश मीशान प्रभो पाही आपन नमामीश, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागत हूं। और भगवान शंकर प्रकट होते हैं और ब्राह्मण की रक्षा होती है। निश्चित रूप से हमारे अंदर भी भाव आ जाए तो परमात्मा जो विराट है, वेदांत वेद्य है, अनघ है, पुराण पुरुष हैं, वेदत्रय लोचन वाले हैं, ऐसे जो परमात्मा है, नामादि भेद रहितम षडभाव शून्यम, नाम और रूप से परे हैं, समस्त विकारों से परे, समस्त प्रपंच से परे हैं, एक अनादि अनंत परिपूर्ण प्रपूर्ण वो परमात्मा शिव निश्चित रूप से हमारे सामने भी प्रकट होंगे, हम पर भी कृपा करेंगे, हमारा भी कल्याण होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को तो विराम देते हैं और कल से आहा भगवान श्री कृष्ण के जो वचनामृत हैं, है ना, वो है अमृत, पियोगे तो अमर हो जाओगे। कल भगवान श्री कृष्ण के वचनामृत की बात करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।